अब इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो मज़ीद उससे हमारे जहन को खोलेगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी बात हुई है उसमें हमें ज़्यादा अपने करीबी लोगों का लगा है। और वैसे तो देखा जाए कि गम और हम हमें अक्सर अपनों का ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें इससे भी ज़्यादा ऊपर बढ़कर सोचना सिखाता है। और ये कब होगा? जब हम करीब के लोगों को अपने साथ मिला चुके होंगे। ये लिख लें, जब हम अपने करीब के लोगों को अपना हम ख्याल बना चुके होते हैं, हम सब लाइक माइंडेड हो चुके होते हैं, हमारी कुव्वत बढ़ चुकी होती है, इनफरादियत से ऊपर उठकर हम इज्तमाईयत की सोच रखते हैं, तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि शहरों में, मुल्कों में, इदारों में, हुक्मरानों में दीन की बात कर सके। एक अकेला दो ग्यारह, आपने कहावत तो सुनी हुई है ना, तो अकेला बंदा ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। एक इंग्लिश की कहावत कहीं पढ़ी थी कि अगर तुम तेज़ चलना चाहते हो तो अकेले चलो, और अगर तुम देर तक चलना चाहते हो तो दूसरों के साथ चलो। तो साथ लेकर जब चलेंगे, अब एक तसव्वुर में लाइए बात कि आप आइडियली अपने घर वालों को, अपने करीबी दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को, अपने हल्का अहबाब को कुरान से जोड़ चुकी हैं। सब के अंदर एक तड़प पैदा हो चुकी है कि उन्होंने अल्लाह के लिए कुछ करना है। तो अब फिर आप बाहर निकलेंगे। दूसरा टॉपिक है ख्वातीन का आम लोगों, अकरबा, अकरबा यानी करीब से, और मारिफ यानी जानने वाले लोग, मारिफ में से जमातों का एहतसाब करना। पहले क्या था? इनफरादी एहतसाब, अब है जमातों का एहतसाब। थोड़ी सी इसकी तमहीद पढ़ते हैं। क़रूने उला यानी पहले दौर की मुसलमान औरतों ने ना सिर्फ आम लोगों, कराबतदारों और शनासा लोगों में से अफराद का एहतसाब किया, बल्कि उन्होंने तब भी फरीज़ा एहतसाब अदा किया जबकि गलती करने वालों की तादाद ज़्यादा होती थी। हम बाज़ दफ़ा क्या कहते हैं, हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, पीपल प्रेशर में आ जाते हैं। अब सब ये कर रहे हैं तो हम कैसे रोकें? तो यहाँ ये लिखा है कि नहीं, सब करें या कम करें, गलत गलत ही होता है। और हक वाले के पास, ईमान वाले के पास इतनी जुरत होनी चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बड़ी से बड़ी बात या छोटी से छोटी बात को अल्लाह की नज़र से देखे कि वो इसको पसंद करता है कि नहीं करता। तो इसमें हम पहला वाक्या क्या देखेंगे, आधी रात को तोहर देखने के लिए तलबे चिराग पर बिनते जैद रज़ी अल्लाह अन्हा का नकद। हज़रत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो की साहबजादी को ख़बर मिली कि कुछ औरतें अपने तोहर की हालत, तोहर कह के मैं पीरियड से पाक हो गई हूँ कि नहीं, आप जानते हैं कि ऐसे वक्त में मुगालता लगा रहता है, ख़त्म हुआ है नहीं, सोच रहे ख़त्म हो गया फिर हो गया, तो वो औरतें रातों को उठ उठ के चेक करती थीं कि कहीं हमारी नमाज ना चली जाए, ये बात हो रही है। चिराग को तलब किया करती थी, उन्होंने इस पर नकद फरमाया। नकद से मुराद ये कि तनकीद की। कैसे की? इमाम मालिक ने अब्दुल्ला बिन अबी बकर से, और उन्होंने अपनी फूफी से, और उन्होंने जैद बिन साबित की साहबजादी से रिवायत नकल की। इन्हें खबर पहुंची कि कुछ औरतें आधी रात को चिरागों को तलब करती हैं ताकि वो देखें कि आया वो हैज से पाक हो चुकी हैं। इस पर वो इन पर तनकीद करती और फरमाती, औरतें ऐसे तो ना किया करती थीं। क्या पता चला कि इस्लाम आसान दीन है, इसमें बेजा मुशक्कत नहीं। अल्लाह ताला ने सूरत हज में ये फरमा दिया, वमा जाअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी गई। और इसी तरह से युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और वह तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। सूरत हज की पहली आयत थी आयत 78, और दूसरी आयत सूरह बकरा की 185 है। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने औरतों को इस बात का पाबंद नहीं किया कि वो आधी रात को उठें और देखें कि वो हैज से पाक हो चुकी है या नहीं। अल्लामा ऐनी ने इनके नकद का सबब बयान करते हुए और तहरीर किया, उन्होंने औरतों पर इसलिए नकद फरमाया क्योंकि इनके तर्ज अमल में मुशक्क़त थी, और दीन में बेजा मुशक्क़त काबिल मज़म्मत है, और ऐसे क्यों ना हो जबकि आधी रात का वक्त आराम के लिए है, तुहर की जाँच पड़ताल के लिए नहीं। दूसरी बात है, दीनी उमूर की सरंजामदेही में बेजा मशक्क़त काबिले तारीफ़ नहीं बल्कि काबिले नक़द और एहतसाब है। काबिले तारीफ़ तर्ज़ अमल तो हदूद शरीयत में रहते हुए दीनी कामों को सरंजाम देना है। तीसरी बात, हज़रत ज़ैनब की साहबजादी ने अपने एहतसाब की तायद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक की औरतों के तर्ज़ अमल को पेश किया कि अगर निसफ़ रात को उठकर तोहर की जाँच पड़ताल करना ज़रूरी होता तो अल्लाह के नबी के बाबरकत ज़माने की औरतें ऐसा ज़रूर करती। तो ख़ुलासा क्या निकला कि वो औरतें कितनी कॉन्शियस थीं। इसके अपोज़िट बास लोग फारिग हो भी जाते हैं, गुसल नहीं कर रहे, नमाज़ें शुरू करनी पड़ेंगी, गुसल भी कर लिया, अभी हमने क्लीनिंग नहीं की, ये नहीं किया, नमाज़ें छोड़ते हैं। तो यहाँ एक साइड का नुक्ता याद रखे कि जब प्योरिटी आ जाए तो उसके बाद फौरन नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, आप गुसल करें या ना करें, उसका इससे गुसल से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने गुसल में जान के देर की तो उस नमाज को आपने जान के कज़ा किया है। तो हमेशा जांच पड़ताल करके जूँ ही आपको एहसास हो कि ये काम हो गया तो आप गुसल करें और उसके बाद नमाज अदा करें। बल्कि ये जो बात है ये हमारे कल्चर में कम है, मुफस्सरीन कहते हैं और उलमाए कराम कहते हैं कि जो पिछली नमाज है, मसलन एक सिस्टर हैं वो असर की नमाज के वक्त फील करती हैं कि वो फारिग हो गई हैं, वो गुसल करके नमाज शुरू करती हैं, तो वो उलमा कहते हैं कि एहतियात का तकाजा है कि उसे पिछली नमाज को भी दोहरा लें। किस सोच के साथ? यही बात कि हो सकता है पाक हो गए थे, हमने चेक नहीं किया। जैसे इस खवातीन रातों को उठ उठ के कर रही थी, और उस दौर में रात को उठ के चेक करना कोई आसान काम नहीं था, ना घरों में चिराग थे, ना बल्ब थे, ना लाइट्स थी, ना वॉशरूम्स थे, तो वो एक मशक्क़त थी। तो अपना ह्यूमन एरर फील करते हुए पिछली नमाज़ पढ़ लें। जैसे अगर आप ईशा के वक्त पे फारिग हुई हैं ना तो मगरिब की भी पढ़ लें, फिर इसी तरह अगर आप असर की पढ़ रही हैं तो पिछली जोहर की भी पढ़ लें, ख़ास तौर पे ये चार नमाज़ों का, क्योंकि फजर से जोहर में काफ़ी टाइम होता है, उसके दौरान अगर पाक हुए हैं तो फ़र्क पता लग जाता है। तो बहरहाल पिछली नमाज भी अदा कर लेनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें ऐसे ही तकवा अता फरमाए। फिर उसके बाद अगला वाक़िया है, तवाफ़ की रकतों को मकरूह वक्त तक मौखर करने पर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतसाब। नमाज फजर के बाद कुछ लोगों ने तवाफ़ किया, फिर वो मजलिस से वाज में बैठ गए। जब तुलू आफ्ताब का वक्त हुआ तो तवाफ़ की दो रकतों को पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा ने इनके इस तर्ज़ अमल पर तनकीद फरमाई। इमाम बुखारी ने उरवा से नकल किया और उन्होंने आयशा से बयान किया, यकीनन कुछ लोगों ने नमाज सुबह के बाद तवाफ़ किया फिर वाज करने वाले के पास बैठ गए। अब इमेजिनेशन में लाए ना, तवाफ़ हो रहा है फजर की नमाज के बाद, फिर एक बंदा वहाँ वाज दे रहा था तो ये भी बैठ गए। जब तुलू आफ्ताब का वक्त हुआ तो उन्होंने उठकर नमाज शुरू कर दी। इस पर आयशा ने फरमाया, तवाफ़ के बाद बैठे रहे और जब वो वक्त आ पहुँचा जिसमें नमाज अदा करना मकरूह है तो उठकर नमाज शुरू कर दी। शायद हज़रत आयशा के एहतसाब के पस मंज़र में ये बात थी कि नमाज फजर के बाद इन लोगों के लिए तवाफ़ की दो रकतें अदा करने की इजाज़त थी, लेकिन उन्होंने इस वक्त तो अदा ना की और ऐन तलुए आफ्ताब के वक्त मकरूह वक्त में अदा करना शुरू कर दी। अल्लाह के नबी के इरशाद के मुताबिक रात और दिन के किसी भी वक्त में बैतुल्ला का तवाफ़ करना और इसके बाद तवाफ़ की दो रकतें अदा करना तो दुरुस्त है। हज़रात आइमा अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इबन माजा, इबन हब्बान और हाकिम रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत जुबैर बिन मुअत्तम से रिवायत नकल की, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनू अब्द मनाफ, रात और दिन की किसी भी घड़ी में किसी को इसके घर के तवाफ़ करने और नमाज़ पढ़ने से ना रोको। तो क्या पता चला कि जैसे आम जगहों पे कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन खाना काबा के अंदर ऐसी पाबंदियाँ नहीं हैं कि चलो इख्तियात के मुताबिक ये कर ले, ये दुरुस्त नहीं है। जब अल्लाह रुख्सत देता है तो मान लीजिए। कुछ लोग नेकी के नाम पर बाज़ दफ़ा ख़ुद को मुश्किल में डालते हैं और दूसरों को भी डालते हैं। तो बहरहाल इसमें यह बात है कि दीन को इस तरीके से अप्लाई कीजिए कि दूसरे उससे दूर ना हो जाए। एक और जुमला अक्सर मैं बोलती हूँ कि आपकी नेकी दूसरे का गुनाह ना बन जाए। बाज़ लोग नेकी के नाम पे दूसरों को इतना सब्र कराते हैं कि वो गुनाहगार हो सकते हैं। तो हमेशा अपने मामलात में, नवाफिल के मामले में, ज़ाती चीज़ों के मामले में फ्लेक्सिबल रहे। हाँ, हलाल हराम के मामले में इंसान कभी भी ना कमी बेशी करे। फिर अगला वाक़िया है, मस्जिद में जनाजा लाने को नापसंद करने पर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतसाब। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौत हुए तो महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुम की ख्वाहिश पर इनका जनाजा मस्जिद में लाया गया और उन्होंने इनकी नमाज जनाजा पढ़ी। कुछ लोगों ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया तो हज़रत आयशा ने इनका एहतसाब किया। इमाम मुस्लिम ने इबाद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रिवायत नकल की, उन्होंने आयशा से रिवायत नकल की, यकीनन जब साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़ौत हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने पैगाम भेजा कि इनका जनाजा मस्जिद में से गुजारा जाए ताकि वो इनकी नमाज जनाजा पढ़ लें। लोगों ने ऐसा ही किया। इस जनाजे को इनके हुजरों के सामने रखा गया और उन्होंने इनकी नमाज जनाजा पढ़ ली। फिर इस जनाजे को बाबुल जनाइज़ के रास्ते, जो कि मकाइद के करीब था, बाहर ले जाया गया। नबी करीम की बीवियों को इत्तला मिली कि लोगों ने इस पर तनकीद की है और कहा है कि जनाजे तो मस्जिद में दाखिल नहीं किए जाते। आयशा को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने फरमाया, जिस बात का लोगों को इल्म नहीं, इस पर तनकीद करने में उन्होंने कितनी जल्दबाजी की है। जनाजे के मस्जिद में से गुजारने पर उन्होंने हम पर एतराज़ किया है, हालांकि रसूलुल्लाह ने सुहैल बिन बैदा की नमाज जनाजा मस्जिद ही के अंदर अदा की थी। तो क्या पता चला कि मस्जिद में जनाजे का लाना और मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करना अल्लाह के नबी की सुन्नत से साबित है। सबसे बड़ी दलील देखिए कि खाना काबा भी तो एक मस्जिद ही है ना, तो उसके अंदर जब जनाजे जाते हैं, लाए जाते हैं, तो बुरी बात तो नहीं। लेकिन बाद लोग जनाजे को एक बड़ी अछूत चीज़ समझते हैं कि ये अंदर आ गया तो ये होगा वो होगा, हालांकि वो इंसान होता है जिसके सब हिल रहे होते हैं पहले। देखिए, सांस की डोरी टूटती है तो लोग आपसे बेगाने हो जाते हैं, मैयत के साथ रात गुजारनी पड़े तो लोग खौफ महसूस करें, कल की रात तो आप उनके साथ थे, सिर्फ सांस की डोरी साथ थी ना। तो कितनी जल्दी एक इंसान दूसरों के लिए अजनबी बन जाता है। दूसरी बात क्या पता चली कि बाज़ लोग लाइल्मी की वजह से सुन्नत से साबित चीज़ों पर भी एतराज़ करते हैं, और अहले इल्म के हाँ इन एतराज़ात की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि वो उनके इल्म की कमी की दलील होती है। फिर अगली बात इसमें फ़ायदे की क्या है कि हज़रत आयशा ने अपने मौक़िफ़ में मज़बूत और एहतसाब में ज़ोर दिया, और वो अपनी बात में बहुत पक्की थी, अपनी बात से हटती नहीं थी। और ऐसे क्यों ना हो जबकि इनकी तायीद सुन्नत मुस्तफ़ा से होती थी, और इसके बाद तो किसी की तनकीद इनकी निगाह में एक पर की भी हैसियत नहीं रखती थी, यानी थोड़ी सी भी हैसियत नहीं थी। मतलब है कि हज़रत आयशा अल्लाह के नबी सल्लम की बात के मुकाबले में किसी को अहमियत नहीं देती थी। अगला वाक्य क्या बताता है कि जवान औरतों को ईदगाह जाने से रोकने पर एक खातून का एहतसाब। बुसरा में जवान औरतों को ईदगाह जाने से रोका जाता था। एक सहाबिया वहाँ तशरीफ़ लाई तो उन्होंने इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को बयान करके ऐसा करने से मना किया। इमाम बुखारी ने हफ्सा से रिवायत नकल की और उन्होंने बयान किया, ईदैन के मौके पर जवान औरतों के जाने से हम मना किया करते थे। एक खातून तशरीफ़ लाई और कसर बिन खल्फ में मेहमान ठहरी। उन्होंने अपनी बहन से रिवायत नकल की कि इनकी बहन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ओढ़नी ना होने की वजह से अगर हम में से कोई ईदगाह ना जाए तो क्या इस पर कोई हरज है? आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी सहेली इसको अपनी जिलबाब उड़ा दे। जब उम्मे अतिया तशरीफ़ लाई तो मैंने इनसे दरियाफ़्त किया कि आपने इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना? उन्होंने जवाब दिया, मेरे बाप कुर्बान हो जाएं, और वो जब भी आपका जिक्र करती तो कहती मेरे बाप इन पर कुर्बान हो जाएं। मैंने इन्हें फरमाते हुए सुना कि जवान पर्दा नशीन और हैज़ वाली औरतों को ईदगाह ले जाया जाए और वो खैर और अहले ईमान की दुआ में शामिल हों, और हैज़ वाली औरतें नमाज की जगह से दूर रहें। क्योंकि खुले मैदानों में होती हैं तो वो इशू भी नहीं है कि मस्जिद में जाना है कि नहीं जाना। हफ्सा ने बयान किया कि मैंने ताज्जुब की वजह से पूछा, हैज़ वाली औरतें भी ईदगाह जाएं? इस पर उम्मे अतिया ने कहा, क्या वो अरफात और फुला फुला जगह नहीं जाती? यानी जाएंगी। क्या पता चला इस वाक्य से कि औरतों की ईदगाह जाने और आते जाते इनका पर्दे का अहतमाम करना, इन दोनों बातों की अहमियत इस किस्से में वाज़ है। दूसरी बात, किसी बस्ती या शहर में राइज दस्तूर और आदात की सुन्नत मुस्तफ़ा से टकराव की सूरत में कतन कोई हैसियत नहीं। इसीलिए मुसलमान औरत ने बुसरा में जवान औरतों को ईदगाह जाने से मना करने की रविश पर तनकीद की। तीसरी बात, मुसलमान औरत ने अपने एहतसाब की तायद में नबी सल्लम की हदीस पेश की, क्योंकि कुरान सुन्नत के अलावा कोई दलील काबिल कबूल नहीं होती। फिर अगली बात यह कि हज़रत हफ्स रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुसलमान औरत की बयान करदा हदीस की तौसीक के लिए हज़रत उम्मे अतिया से इसके मुतल्लिक सवाल किया, यानी तौसीक से मेरा कि चेक किया कि ये ठीक है, नहीं जिसको आप डबल चेक कह सकते हैं। उम्मे अतिया नबी करीम का किस कदर एहतराम करती थी, जब भी आपका जिक्र करती तो साथ ही कहती मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाए, और ऐ हमारे रब हमें भी अल्लाह के नबी की इसी तरह इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। अंदाज़ है, अरबों में आज भी मारूफ है, अच्छा लगता है, करता तो कोई नहीं है, लेकिन एक इजहार करके अगले को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया जा सकता है। फिर अगला वाक्य है इशा के बाद बेकार गुफ्तगू पर आयशा का एहतसाब रदी अल्लाहु अन्हा। हज़रत आयशा के कुछ घर वाले इशा के बाद बेकार गुफ्तगू में बैठते तो वो इन्हें इससे मना करती, है अहम मौजू आज का तो कल्चर ही रातों को जागना और दिन को सोना है, और अफसोस के साथ ये भी हमारे प्यारे अपने मुल्क की बातें, बाहर के मुल्कों में 6-7 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है, घरों में सो ही जाते हैं, गोरों के घरों की लाइट्स ही नहीं जलती 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद। लेकिन यह है कि हमारे मुल्क में तो रात भीगती है, लोग रात जागते हैं और फजर के करीब सोते हैं, या फजर पढ़ के सोते हैं, या फिर उससे पहले आँख लग जाती होगी, तो यहाँ से ही बेबरकती का आगाज़ हो जाता है। दलील क्या है? इमाम मालिक ने फरमाया, इन्हें ये बात पहुँची कि आयशा अपने घर के कुछ लोगों को पैगाम भेजा करती थी, क्या तुम नामे अमाल लिखने वाले फरिश्तों को आराम करने नहीं दोगे? तो आप भी ये जुमला लिख लें, हैं? तो अमल क्या है मेरा आपका? घर में रात को देर से जागने वालों को अब आ जाके ये भी लड़ाई मोल ले लें, हैं? देखिए, जो दिन भर थकते हैं ना काम करके, उनको रात को नींद आती है। कई सिस्टर्स हैं, मैं उनको जानती हूँ कि वो फजर के बाद नहीं सोती ना, अर्ली बर्ड्स जिनको कहें, चहक रहे होते हैं सुबह उठ के, काम कर भाग दो, लेकिन उधर से मगरिब इशा के बाद वो कहती है हमारी अब बैटरी डाउन हो रही है क्योंकि अब हम थक गए। जिसने उठना ही 12-1 बजे तो वो रात कैसे सोएगा जल्दी। इसके लिए एक दिन उनका सर्कल तोड़ने की ज़रूरत है। आप कोशिश करेंगे ना कि आप उनको ये कहें कि जल्दी उठा करें। जल्दी उठाना शुरू नहीं है, ये आखिर है। जिसको भी आप सुबह जल्दी उठाना चाहते हैं उसको पहले कहें जल्दी सोए। तो जब भी इसमें इसलाह होगी सोने के जागने के वक्त से होगी। घर में सारे बच्चे, मियाँ बीवी बच्चे, घर में जो भी रिश्तेदार बैठ के मशवरा कर लें, क्या ख्याल है हमें जल्दी सोना चाहिए, इरादा करें। अब एक जाग रहा है, कोई खटपट कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई फ़ोन पे टक टक कर रहा है, नींद तो नहीं आएगी ना, तो सबको सोना है। तो लिहाजा चले आज रात हम 8:30-9 बजे सोते हैं। ईशा के बाद नहीं जागना चाहिए, ईशा के बाद जागना और ईशा से पहले सोना नापसंदीदा। तो जब 1 हफ्ता 10 दिन में ये प्रैक्टिस कर लेंगे आप देखेंगे कि आदत बन जाएगी। कितने लोग कोशिश करेंगे। वीकडेज में तो बच्चों ने स्कूल की वजह से सोना ही होता है। और मज़े की पता है कि छोटे बच्चों वाले घर में फिर भी लोग सो जाते हैं, बड़े बच्चों के घर में नहीं जा। और उसकी वजह कि बेड में भी वो फ़ोन उनके साथ खेल रहे होते हैं, उनके पास और ही बहुत मसरूफियत है। आप उनको बेड पर डालें वो शुक्र करेंगे चलो अम्मा भी जाके सोएं, वो अंदर गद्दे में वो अपनी लाइट जला के खेल रहे होते हैं। फिर जहन साजी, फिर वही बात है कि वक्त का एहसास, के वक्त कितना कीमती है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। क्या पता चला हज़रत आयशा का यह एहतसाब नबी सल्लम की कमाल इत्तबा की दलील है कि आप इस बात को नापसंद करती थी कि अल्लाह के नबी ने जो कहा उस पे अमल ना किया जाए। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू बरज़ा से रिवायत नकल की है, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने और इसके बाद गुफ्तगू को नापसंद फरमाते थे। हमारी तो शादियाँ शुरू ईशा के बाद है, कहते जल्दी से पढ़ लो फिर जाना है शादी में। मगरिब ईशा पढ़ के फिर जाते हैं शादियों में, फिक्र ही कोई नहीं क्योंकि अब नमाज तो पढ़ी हुई है। हाँ, तो अल्लाह के नबी के, अब देखिए ये भी तो सुन्नतें हैं ना। हम इतना झगड़ा करते हैं दाढ़ी की लंबाई पे, शलवार ऊंची है, जो भी है, इन सुन्नतों की बात क्यों नहीं करते लोग? आज कितनी सुन्नतें जो मतरूक हुई हुई हैं। बहरहाल हज़रत आयशा ने एहतसाब में डांट डपट का तरीका इख्तियार किया। आपका सवालिया अंदाज इनकार और तौबीख के लिए, यानी कहने में लग रहा है कि सवाल कर रही हैं लेकिन असल में वो उसको इनकार कर रही थी। इनके एहतसाब में बेकार गुफ्तगू करने वालों के लिए तंबीह है कि होश करो, जो बोल रहे हो किरामन कातिबीन इसको तहरीर कर रहे हैं। यानी ये कितनी अच्छी बात है कि फरिश्तों को तो आराम करने दो, क्योंकि हम नहीं सोएंगे तो वो कैसे सो सकते हैं। बहरहाल फरिश्ते इन सारी फीलिंग से आज़ाद हैं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर अब तुम भी सो जाओ। अफसोस की बात है कि हमारे दरमियान ये वबा बहुत आम हो चुकी है। रात को देर तक बेकार बातों में बेदार रहना और दिन को काम और तलब इल्म के दौरान जमाइयाँ लेना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इलल्लाहिल मुश्तकी व हुवल मुस्तान। अल्लाह ताला हमें इसकी इस्लाह की तौफीक दे। अपनी ज़ात से शुरू कर दें। आप सो जाएं वक्त पे, ना बच्चों को खाना मिलेगा ना चाय पानी मिलेगा। घर का माहौल ही ऐसा बना दें, लाइटें कम कर दें, यदि फीलिंग आने लगे कि अब नींद आ रही है तो इंशाअल्लाह ताला फिर लोग भी इसके यूज़ टू होंगे। हवा अंसारिया का साइल को ज़रूर कुछ देने का हुक्म। अमर बिन माज अंसारी के यहाँ एक साइल आया। इनकी दादी हज़रत हव्वा ने अहले खाना को हुक्म दिया कि इसको ज़रूर कुछ दिया जाए। दलील, इमाम अहमद ने अमर बिन माज अंसारी से रिवायत नकल की है। उन्होंने बयान किया एक साइल इनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इनकी दादी हव्वा ने इसको कहा इसको एक खजूर खिलाओ। उन्होंने कहा, यानी अहले खाना ने, हमारे पास मौजूद नहीं है। इनकी दादी ने कहा तो इसको सत्तू पिला दो। उन्होंने कहा आप अजीब बात कह रही हैं, क्या हम इसको ऐसी चीज़ खिला सकते हैं जो हमारे पास मौजूद ही नहीं है? उन्होंने कहा यकीनन मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि साइल को खाली हाथ ना वापस करो और कुछ मुयस्सर ना हो तो गाय या बकरी के पाए का जला हुआ निचला हिस्सा ही दे दो। तो क्या पता चला इस किस्से से कि हज़रत हव्वा जो थी वो साइल को कुछ ना कुछ देने का जज्बा रखती थी और उन्होंने अपनी बात की ताईद में अल्लाह के नबी के फरमान को पेश किया। अगला वाक्य है मट्टी के मटकों में नबीस बनाने के मुतल्लिक कसरत सवाल पर सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा का एहतसाब। नबीस क्या होती है? रात को खजूरें भिगो दो, सुबह उसी भीगी हुई खजूर को पानी में मसल के पीना। वो एक बड़ा ताकतवर मशरूब होता है और फौरी पीना होता है क्योंकि अगर उसको थोड़ा रखेंगे तो फिर उसमें खिमार पैदा होगा जिससे भी शराब की कैफियत पैदा होने लगती है। तो ये मट्टी के मटकों में अक्सर लोग बनाते थे उस दौर में भी ठंडी रहने की वजह से। कुफा की कुछ औरतें उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया के पास आईं और मिट्टी के मटकों में नबीज तैयार करने के बारे में कसरत से सवालात किए। इस पर उन्होंने नकद फरमाया। इमाम अहमद ने याला बिन हकीम से रिवायत नकल की और उन्होंने सुहैरा बिनते जैफर को बयान करते हुए सुना। उन्होंने कहा, हमने हज किया, फिर हम मदीना चली गईं। वहाँ हम सफिया बिनते हुई की खिदमत में हाजिर हुई तो इनके पास कूफा की भी कुछ औरतें थीं। उन्होंने हमसे कहा, अगर पसंद करो तो तुम सवाल करो और हम सुनती हैं, अगर चाहो तो हम सवाल करती हैं और आप लोग सुनो। हमने कहा, आप लोग सवाल कीजिए। उन्होंने औरत, इसके शौहर, हैज़ और दीगर कई बातों के मुतल्लिक पूछा। फिर उन्होंने मिट्टी के मटकों में नबीज़ के बारे में पूछा। हज़रत सफ़िया ने फरमाया, अहले आराक, तुमने मिट्टी के मटकों की नबीज़ के बारे में बहुत सवालात किए हैं। अगर तुम में से कोई अपनी खजूरों को पकाए, फिर इन्हें अच्छी तरह मल ले, फिर साफ़ करके चमड़े के मशकीज़े में डालकर इसके मुंह को ऊपर से बांध दे और जब नबीज़ तैयार हो जाए तो ख़ुद पिए और अपने शौहर को पिलाए, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एक रिवायत में कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने मिट्टी के मटकों की नबीज़ को हराम करार दे दिया है। वही बात कि उसमें फिर खमीर उभरने लगता है। पता क्या चला कि ममनुआ कामों और चीज़ों का सबब बनने वाली बातों और चीज़ों को भी शरीयत इस्लामिया में हराम करार दिया जाता है ताकि लोग हराम करदा बातों और चीज़ों से आसानी से बच सकें। फिर मिट्टी के मटकों में नबीज़ तैयार करने की सूरत में नशा पैदा होने के ज़्यादा इम्कानियात के पेश नज़र इनमें नबीज़ का तैयार करना हराम कर दिया गया। फिर क्या पता चला कि ममनुआ चीज़ों में कसरत से सवाल नहीं करने चाहिए, ये नापसंदीदा। इसलिए हज़रत उम्मुल मोमिनीन सफ़िया ने मिट्टी के मटकों में नबीज़ के बारे में कसरत सवाल पर तनकीद फरमाई। फिर अगला इसमें इशू क्या निकला कि हज़रत सफ़िया ने मिट्टी के मटकों में नबीज़ तैयार करने की हुरमत बयान करने पर इक्तफा न किया बल्कि इसके साथ जायज़ मुतबादिल तरीक़ेकार की तरफ रहनुमाई फरमाई। दावत व इख्तसाब में इस बात की अहमियत और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और हज़रत सफ़िया ने मिट्टी के मटकों में नबीज़ तैयार करने की हुरमत के मुतल्लिक अपने एहतसाब की तायिद में सुन्नत मुस्तफ़ा पेश की और बिला शक व शुबा हिल्लत व हुरमत के सिलसिले में सिर्फ हर्फ आखिर अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और बयान ही है। तो सारी बात का खुलासा फिर क्या निकला कि कोई भी किसी के अंदर गलत चीज़ देखी तो उसको हत्तुल वसा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी बातें हुई हैं इसमें से कोई क्वेश्चन है? ये पूछती हैं कि सुबह के वक्त जागने के मुतल्लिक हदीस का मफहूम, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत रख दे, आज़ादी खवातीन सुबह को सोती रहती हैं। देखिए इसके बारे में समझ लें कि नंबर एक ये कि फजर तो आपने पढ़नी ही है, ये हद है। फजर से पहले 15 मिनट उठ जाएं, 1 घंटा उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, फिर फजर पढ़ें, अस्कार करें, लेकिन हद क्या है कि फजर नहीं कज़ा होनी चाहिए ना। ठीक है, उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, फिर जो बीच का टाइम होता है जिसमें सूरज अभी नहीं निकला, वह इशराक का टाइम है, जिक्र अस्कार कुरान की तिलावत है, फिर सूरज निकलने के बाद 2 नफिल पढ़ लें, इसके बाद आप सोना चाहें तो सो सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ इलाक़ों और माहौल में, कल्चर में ये चीज़ें मौजूद हैं। मसलन आप देखिए जैसे नॉर्वे में गर्मियों में जब रोज़े आते हैं, अभी जो गुजरे हैं, तो लोग फजर ही पढ़ के सोते थे। ओनली टाइम टू स्लीप इज़ बिटवीन फजर एंड जोहर, और वो 12 घंटे का टाइम होता है। सारी रात तो जागते रहे, इफ्तारी की, सह फिर नमाज़ पढ़ी, फिर तरावी पढ़ी, फिर सहरी की, 2-2.5 बजे तक यही कुछ चल रहा होता है। तो 3 बजे के करीब फजर पढ़ के फिर लोग सोते हैं और जोहर होती है जाके कुछ 4 बजे 5 बजे के करीब, तो फिर ये टाइम सोने का होता है, सोना पड़ता है उधर। ठीक है, जिनके बच्चे हैं जाते स्कूलों में उनको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ऐसे हालत में सो सकते हैं, लेकिन अगर फजर छोड़ के सोते हैं तो ये तो किसी के लिए भी नहीं। फिर दूसरी बात, जो आपने बुज़ुर्गों के लिए कहा है, तो डेफिनेटली बुज़ुर्गों में अक्सर लोग फजर से भी पहले उठ जाते हैं, जिक्र अस्कार में 2-2.5 घंटे जब गुजरते हैं तो थकन है, तो फिर वो भी सो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें इंशाल्लाह। लेकिन जो उठते ही नहीं है इसलिए कि अब नींद ना खुल जाए, असल में उस वक्त उठना बड़ा मुश्किल है। आप जब एक दफ़ा फजर के लिए उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद खुली जाती है। और वो एक बच्चा था तो वो फजर का वजू करता था तो आँखें बंद करके करता था, क्योंकि मेरी नींद ना खुल जाए, तो वो पानी तो नहीं जाता ना, आँखें बंद हो सारी, तो मुश्किल तो लगता है, लेकिन बहरहाल जो जिस हद तक कर सके। जाय नमाज वेलवेट के चलते हैं आजकल, कैसा होना चाहिए? देखिए तवज्जो नहीं बरतनी चाहिए, इतना नरम ना हो कि आप उसकी नरमी फील करते रहें, इतना सख्त ना हो कि उसकी सख्ती फील करते रहें। ये आपके अपने ऊपर है कि आप नमाज वेलवेट पे पढ़ रहे हैं या आप पथरीली ज़मीन पे पढ़ें, आप फोकस कितना है। लेकिन बहुत चमक दमक और शाइनी और फैंसी कढ़ाइयों वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अपने लिए खुद ही फितना है कि इंसान की तवज्जो फिर बार बार जाएगी। आम जाए नमाज जो रोज़ चलते हैं उस पर तवज्जो नहीं जाती, लेकिन जो बहुत नया खूबसूरत और यूनिक सा होगा उस पर जाएगी। हज के लिए हदीस का मफहूम है कि जो इस्तेदात होने के बावजूद हज ना करे, फिर वो चाहे यहूदी मरे या नसरानी, इस मद में बेटियों के लिए रखा हुआ जेवर बेच देना चाहिए, बेशक अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, बेटियां जेवर ना लेके जाएंगी तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हज नहीं करेंगे तो उसमें तो सवाल है। आज हमारे कल्चर में जवान होते ही बेटियों की शादी की फिक्र होती है, हज की नहीं होती, तो हज कर लेना चाहिए। घर में बच्चों के टॉयज़ की आंखें होती हैं, कपड़ों पर बहुत एहतियात करती हूँ, मार्कर लगा देती हूँ। टॉयज़ और डॉल्स के मुतल्लिक यह काम है क्योंकि हज़रत आयशा भी गालिबन गुड़िया से खेलती थी, और अपने मुजस्मे जिनकी आंखें ना हों इनका घर में होना कैसा है। ससुर ने ड्राइंग रूम में छोटे भालू सजाए हुए हैं, इनकी आंखें मिटा कर रखा रहने दो। जी वही बात है कि सर मिटा दें और फिर उसके बाद जो भी है रख सकते हैं। और गुड़िया में देखिए, एक होता सिर्फ उसकी शक्ल गुड़िया जैसी है, ढीली ढाली कपड़े की, जो हज़रत आयशा खेलती थी अगर तो वो गुड़िया थी कपड़े की, जैसे पहले दौर में औरतें खुद ही घरों में सीती थी। बट अब आज की बारबी और पूरे वेस्टर्न ड्रेस और जिस्म के नुमाया इजहार के साथ इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये कि बच्चे अमूमन गुड़िया को मार ही रहे होते हैं, तो इस्लाम में तस्वीर के बारे में ये कि इसकी बेहुर्मती करो, कभी बालों से पकड़ा हुआ कुछ है, लेकिन कम अज़ कम अगर आप अपने बच्चों को लेके देते हैं या कोई आपके बच्चों के लिए खरीदे, तो उनको क्लियर कि कोई ऐसी बेहया ड्रेसिंग में गुड़िया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।